पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाभगवाय जीवों के लिए साध्य और साधन क्या है? उन्होंने कहा स्वभाव आचरणे विष्णु पक्षी है, अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जब मनुष्य इस वर्ग में है और इस आश्रम में है इसके अनुरूप अपने आवश्यक कर्तव्यों को पालन करता हुआ भगवान की आराधना करता है तो उससे भगवान को महात्मा जी ने कहा तो इसका ये तात्पर्य हुआ कि विष्णु की प्रसन्नता ही यहाँ पर साध्य है और वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करता हुआ भगवान की आराधना विष्णु की जो आराधना होती है वही यहाँ पर साध्य। महाप्रभु जी ने कहा कि ये बाह्य ये ठीक नहीं है, आगे आप करो। साधारण रूप में हम देखते हैं कि महाराज मृग थे, वो क्षत्रिय थे, राजा तो उनका दान देना सुरता दूता राज्य शासन दंड निग्रह इत्यादि उस राजा के लिए उचित है, ये बड़ी और आश्रम में है गृहस्थ इसलिए उनके लिए ये उचित। एक राजा है और गृहस्थ है राजा है क्षत्रिय इनके लिए उचित है शुभता वीरता दान दया और शासन। उन्होंने देखा शासन अच्छी तरह से किया, राज्य में सर्वपक्ष शासन चल रहा, तो डकैत बदमाश लंपट एकदम चुपचाप शांत है, कुछ नहीं कर कठोर उनका शासन। और दान के लिए उन्होंने कहा था मैं रोज कोटी कोटी गायों का दान करूं, ये दान भी कर रहा है। और गाय ऐसे नहीं सिंह सोने से बनते थे और पैर में चांदी का सू और अंगों में
सोने का झालर,
सोने के झालर लटकते हुए खूब सुंदर मूल्य कपड़े महले कपड़े कुछ सकी भी। और ऐसी गाय जिसमें कहीं हाड़ न देखा जाए, बछड़े और बछड़ी समेत जो पूरी देने वाली गाय ऐसे गाय से दे। आकाश के तारे नहीं गिने जाए गिन लिया जा संभव हो सकता है, किंतु कितनी गाय उन्होंने दान की ये कितनी गाय दान कर ये इनका वर्ण और आश्रम के अनुसार में एक गृहस्थ का एक क्षत्रिय राजा का यह धर्म है उसको पूरा कर। आज तक वैसा कोई राजा नहीं हुआ जो ऐसा किया, किंतु अंत में इसका फल होना चाहिए अच्छा, इस लोक में भी सुख और परलोक में भी सुख। तो इस लोक में तो सुहू को कुछ अब देखा नहीं जाता, बल्कि ब्राह्मण का गाय के लिए झगड़ा हो गया, गाय दान कर दी और वो दान गाय दान कर दिया और उस दल में से निकल करके वो बाहर चली गई। और फिर एक इनके संग्रह करने वाले गाय के जो था वो उस गाय को फिर ले आकर के राजा को दे दिया, इन्होंने फिर दोबारा दान कर दिया। तो जिसको पहले दान किया था वो और जो दूसरा दान किया था दोनों में झगड़ा, ये गाय मेरी है तो मेरी। राजा के पास में गए, राजा कहा ये आपने दान हमने दी थी गाय, ये मेरी है। वो कहता है अरे अभी हमको आपने दान दी है, बस खूब झगड़ा लग गया। राजा ने कहा जी इसके बदले में तुम एक गाय ले लो, तुम प्रसन्न हो जाओ। एक गाय का लाख गाय देंगे कभी नहीं, हमको यही गाय। और दूसरे ने भी यही कहा कि हम दूसरी गाय नहीं ली, यही गाय आप पृथ्वी का दान कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, किंतु गाय वही है। दोनों जीत पर आ गए। राजा ने कहा कि सब उसको नहीं प्रसन्न कर सकते, उसको भी प्रसन्न नहीं कर सकते। फल ये हुआ तुम लोगों ने इनको अभी चंपाते जाओ तू गिरगित बन जाए। गिरगित ऐसे ऐसे कहता है और ऐसे ऐसे भी करता, ऐसा तू बन जा, देकर के तुम नहीं किया। अब वो गिरगित होकर के हजार लाख के वर्षों तक कुएं में बहुत विशाल गिरगित हो चुके थे। तो ये कर्म का फल हुआ, अच्छे कर्म का ये फल, अच्छा कर्म है तो इसका तो ये फल हुआ। राजा हरिश्चंद्र के सत्यवादी थे, उस सत्य के लिए उनको अपने बिकना पड़ा, अपने पुत्र को बेचना पड़ा, अपनी रानी को एक शूद्र के यहाँ चंडाल के यहाँ और भी स्मशान भूमि में रहने वाले ऐसे लोगों को तो बतलाओ। तो ये कर्म जी मार्ग है, इसका गुण दोष होने पर भी दोष इसके हैं। दूसरी बात, साधु उसको कहते हैं चरम अवस्था में जिसे कि भगवान को प्रसन्नता हो, चरम प्रसन्नता हो, इसमें अपनी प्रशंसा के लिए अपने अपने सुख भोग के लिए स्वर्ग के लिए ये दिया जा रहा है। यहाँ पर माताएं दान करती हैं घरों में, कोई जाए तो कुछ दे, मिठाई दान कर दिया कोई कुछ दे, उसका बीमार बच्चा है उसको ऐसे ऐसे आंस करके, अच्छा ये दान हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ तो रोग दान हुआ कि हमारा बच्चा अच्छा हो गया। अब इसमें ये दान नहीं हो करके ये अपने सुख के लिए हो गया, अपना पूरा भला जो कुछ था निर्मंथन करके लो तुम लोग भोग। तो ये तो पाप कर्म हुआ, किंतु अपने सुख के लिए इसे करते हैं और इसी को अच्छा समझते हैं। तो इस तरह से ये कर्म ही ऐसा है, ऊपर नीचे और आदि अंत मतलब है, अशुभ है। इसलिए इसे साथ जो कल्याण है ये इससे नहीं होगा, यही नहीं और भी देखा जाए जहां जहां ऐसा कर्म है वो कर्मों की गति यही है, अस्वस्थ कर्म अवसर। इसलिए इन कर्मों को महाप्रभु जी ने कहा कि इसके द्वारा भगवान प्रसन्न नहीं होते, उसमें अपने वर्ण और आश्रम के कर्म से नहीं, हाँ उसमें एक प्रसन्नता की क्षीण लहर है, वो है क्या है जब विष्णु की उपासना करते हैं, किंतु वो विष्णु की उपासना भी करता है ठाकुर जी, उपासना जब हो जाएगी ठाकुर जी हमारा सर सर थकता, हमारे दुख दारिद्र दूर है, वो भी अपने लिए मांग लेता है, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए नहीं दे देते हैं, किंतु प्रसन्न अपने लिए मांग दिया। इसलिए ये कहते हैं महाप्रभु जी यो बात जो आगे कहा इसमें धर्म कर्म नहीं है, जो लोग ऐसा करते हैं ना कर्म लोग विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु की भी प्रसन्नता करते हैं, ठाकुर जी को फूल देंगे माला देंगे उनके चौकस को ऐसे ऐसे करते हैं,
जब आते हैं चौपट को
रंगेश्वर में चौपट को जब आते हैं गरीबी लाके दबाते हैं लोग किस लिए करते हैं अपने लिए भगवान के लिए कुछ महाप्रभु ने जैसा कि आत्मा से इसका कोई भी संबंध नहीं है आगे से भी कहा क्यों संसार के अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में ऐसा ही करते हैं अधिकांश लोग जो कर्म कर्म नहीं भी जानते हैं तत्व से और ऐसे करने वालों को लोग कहते हैं कि ये बहुत भक्ति करती है कि भक्ति कर पाए इसलिए इसे भक्ति का भगवान के मैंने आत्मधर्म से इसका कोई भी संबंध नहीं इसलिए इसको कहा बताओ इसको प्रभु कहे इन बात के आगे कहा रा कहे कृष्ण कर्म अर्पण फिर राय रामानंद ने कहा कि कृष्ण कर्मार्पण जो कुछ करो कर्म वो कृष्ण को अर्पण करो उसका फल लेकर के भगवान को अर्पण करो और सर्वसाधता समस्त साधनों का ये सार है इसमें एक बात है कृष्ण का कर्म अर्पण या उसका फल अर्पण करना ये साधन है ना साध्य है और ये तो साधन है ना अपने कर्मों का फल भगवान को अर्पण करना ये है साधन किंतु इनको कह रहे हैं सर्व साधनता इसका तात्पर्य यही है इसके द्वारा जो फल मिलता है वो साध्य है अब इस पर हम लोग विचार करें महाप्रभु जी ने कहा हो बाह्य आगे का ये भी बाहरी है ये भी आत्मा संबंधित ये कोई धर्म नहीं अब इस पर चलते हैं आप लोगों को याद होगा श्रवणम श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति के लक्षणा क्रियेत भगवती अध्यासं मन्ये अतीतम् श्रेणकत्व ने कहा तुमने जो अध्ययन किया इसमें से सार तुमने क्या समझा वो थोड़ा सा हमको बतला दो तो वो कह रहे हैं अतीत जो ऐसा अधीत मैंने अध्ययन किया है अतः जो समझता है कैसा विष्णु के लिए जो के संबंध में जो श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन आचमन अर्चन बंधन दास्य सप्त अप्रिय नौधादि वस्तु यदि इति पुंसार्पिता भक्ति ये नौलक्षणा भक्ति यदि भगवान के चरणों में अर्पित करके तब करते हैं तब तो ये भक्ति है अर्पित किया नहीं तो भगवान का कथा सुनना भी ये नहीं यहाँ अर्पित मैंने क्या इसको समझिए यहाँ पर अपने को अर्पित करो ये मैं आपका हूँ और आपके प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ अपने लिए नहीं कर रहा मैं ये जो आपका अर्पण कर रहा हूँ इससे आप प्रसन्न हो हम बदले में कुछ चाहते नहीं है इसलिए अपने को ही अर्पण जिन्होंने कर दिया और करने के बाद में जो करते हैं तब तो भक्ति होगी अन्यथा भक्ति नहीं होगी भागवत की कथा सुनने से ही ये भक्ति नहीं हो जाए कब होगी यदि अपने को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो पहले गुरु भगवान के यहाँ अपने को अर्पित करो भगवान कभी मिल नहीं रहे तो गुरु रूपी जो भगवान है जो हमको ले जाना चाहते हैं उनके चरणों में अपने को अर्पित मैं तुम्हारा हूँ यदि मैं उनका हो गया तो मेरा वस्त्र उनका हुआ कि नहीं तब है? हमारा चश्मा उनका हुआ कि नहीं यदि मैं ही हमारा घर उनका हो गया कि नहीं हमारे जितने परिवार के लोग हैं सब उनके हो गए कि नहीं यदि पहले मैंने अर्पण कर दिया इसलिए हमारा सब कुछ उनका है इसलिए मेरा किया हुआ जो कुछ है वो भक्ति हो जाएगी और जिन्होंने ऐसा नहीं किया, समर्पित आत्मा नहीं है, वो लाभ करते हैं उत्पाद या कुछ होकर के पीछे पीछे फिर गुरु के चरणों में शरणागत होकर के दीक्षा इत्यादि ले सकते हैं। इसलिए कहते हैं उस श्रेणी की तो ये है नहीं। अभी जो कहा कर्म आचरण, ये जो कर्म अर्पण है, पहले कर्म करके तब उसको अर्पण कर रहे हैं, एक ये स्थिति। और एक है पहले अपने को अर्पण करके तब फिर कर्म करे, ये दो बात है। जो लोग पहले अपने को अर्पित करके जो भक्ति का कर्म करते हैं उनकी तो भक्ति हो गई, और जिन लोगों ने अभी ऐसा नहीं किया, एक आम का पेड़ लगाया, ये कर्म है ना, उसके यहाँ पर बतला रहे हैं यज करोति, गीता का यज करोति यदत नास्ति यज्ञ होति तदासि तत्, जब तपस्या कौनते तब गुरुत्व मदर। तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ स्नाति खाते हो, भोजन करते हो, यज्ञ होती जो तू हवन करते हो, ददा जो कुछ तुम देते हो, जब तपस्या जो तुम परिश्रम करते हो, तपस्या माने यहाँ पर कभी पूछा है, जो कुछ परिश्रम करते हो तपस्या करते हो, कौनते वो पुरुष मद अर्पणम, मद अर्पणम पुरुष मुझे अर्पण। इसमें एक और भी बात है, भगवान को जब तुम शराब पीते हो तो भगवान को पहले शराब दे दो, चाय पीते हैं हम तो भगवान को पहले चाय देकर के उसमें तुलसी पत्ता देकर के पियेंगे। बंगाल में लोग मछली खाते हैं तो उसमें भी तुलसी देकर भगवान को अर्पण किया जाएगा। इसलिए ऐसी चीजें अर्पण नहीं करनी है। शास्त्र विहित शास्त्र में जिन चीजों को भगवान को देने के लिए आदेश, ऐसी सात्विक वस्तुओं को भगवान को अर्पण किया जाए। शब्द ये कुछ कर्म निष्ठा ज्ञान निष्ठा भक्ति हुई, अन्यथा भक्ति भी नहीं होगी। जिसको कहते हैं आरोप सिद्धांत, भक्ति तो नहीं किंतु उसमें आरोप किया जाए, तो वो सब जगह आरोप नहीं किया जाए। सब कर्मों में जिसको वेद शास्त्र पुराणी स्मृतियां जिसको कहते हैं सब कर्म, उन्होंने व्यवस्था की है जीवन के लिए, ऐसे कर्मों का फल ही भगवान को अर्पण। सब तो ये कर्म विचरा हुआ, किंतु ये यज्ञ करो कि अच्छा या बुरा जो कुछ तुम करते हो, जदस्नासी जो कुछ खाते हो, जज होती इसमें प्रतिबंध नहीं लगाया गया, जो शास्त्र स्तुति और स्मृतियों के द्वारा कहे गए ये भी कर्मों का ही फल भगवान को दो इसमें नहीं। इसलिए ये तो वो जो आरोप सिद्धा बतलाया कर्म निष्ठा ज्ञान निष्ठा भक्ति वो भी नहीं है। ये इसलिए कहते हैं जो लोग अनन्य भक्ति के अधिकारी नहीं, अनन्य भक्ति के बाद छोड़ दो, जो औपाधिक भक्ति जो आरोप सिद्धा और संग सिद्धा भक्ति है उसके भी अधिकारी है। ये किन के लिए है? जगत में तीन प्रकार के लोग मान लिया जाए, एक मूर्ख अज्ञ, कुछ भी अच्छा बुरा भला कुछ नहीं जानता है, वो लोग वैदिक कर्मों को नहीं करते, भगवान का अर्पण करेंगे कुछ इसका प्रश्न नहीं है, वो तो अज्ञ है क्या अर्पण करेंगे। दूसरे होते हैं नास्ति, वो जानते तो सब कुछ है किंतु उसमें विश्वास है वो करते नहीं, नास्ति लोग जानते हैं। लोगों कहते कहाँ जा रहे हो तो जमुना में स्नान है, जमुना में स्नान करे गंदी पड़ी हुई है जमुना, उसमें जाएगा तो तुमको रोग इत्यादि हो जाएंगे, जमुना में क्या है, जैसे नदी नाले हैं वैसे नदी नाला है, ऐसा मत कहो, आचार्य सब आचार्य जमुना कोई देवी है, वो कहता है ये देवी है, उसका सजे नहीं है। नास्तिक जो करो नास्ती वेदाना, ईश्वर नहीं है वेद नहीं है वो लग है नास्ती, उनके लिए ऐसे कर्म की कोई भी आवश्यकता नहीं करनी। और जो अज्ञ व्यक्ति है कुछ भी नहीं जाते दिशाओं में एकदम लवली है, उनके लिए भी भगवान के अर्पण के लिए कोई बात नहीं है। और तीसरा है अनन्य वाले, अनन्य जो भक्त हैं वो तो जानते हैं, किंतु उनको भी उनके लिए ये नहीं कहा गया जब करो। अनन्य भक्ति वाले तो भगवान के लिए अपने को समर्पण करके और सब करेंगे, सब भक्ति का कार्य श्रमणम सतम विष्णु स्मरण इत्यादि करेंगे, गुरु के यहाँ दीक्षा मंत्र लेकर के विधिवत भगवान से संबंध ज्ञान रख करके अपराधों को दूर करके भगवान का भजन करते हैं, उनके लिए नहीं। इनके लिए किनके लिए है? नास्तिक भी नहीं है, अत्यंत अज्ञ भी नहीं है, किंतु अभी कुछ संस्कार उदित होने जा रहे हैं, कुछ कुछ उनके संस्कार हैं, वो साधु गुरु वैष्णव की बातें कुछ कुछ उन्हें समझने लगे हैं। ऐसे लोगों के लिए कहते हैं, अच्छा भाई तुम नहीं कर सकता तो एक बात कर, तुम जल करो कि जो कुछ खाई चाहते हो वो भगवान को अर्पण कर दो, जो खाते हो कर दो, जज होती जो हम करते हैं जो कुछ देते हैं उसको, जब तपस्या जो कुछ तपस्या करते हो वो हमको ही अर्पण कर दो। कृष्ण जानते हैं ऐसा करते 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 साधुओं का संग होगा और फिर समझ बूझ करके वैदिक वेद विहित कर्म का फल ही वो हमको पीछे से देगा, अब ऐसी अज्ञता नहीं रह जाए। पहले इतना तो करे तो संसार वाले इतना तो पहले करेंगे, जो कुछ करते हैं मुझे देवता देवी को नहीं और दूसरे को नहीं, किसको? मत और वर्णन, मत माने मुझे जो माने कृष्ण को यहाँ पर देख रहा, ऐसा व्यक्ति बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति साधारण नहीं, किंतु अभी प्रारंभिक है पर्वत भजन के लिए बहुत प्रारंभिक, अभी भजन सजन सिद्ध नहीं है, पहले अपनी असत कर लीजिए है, किंतु धीरे धीरे साधुओं के संग में आने पर अपने कर्मों का अर्पण करते 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 सब ऐसा हो। इसलिए कह रहे हैं सुबह पुरुष जब तपस्या पुरुष समर्पणम, भारत में भी ऐसा कहा गया, एक आया है ऐसा नियम, नेह जप कर्म धर्म आय न विरागाय कल्प कल्पते और एक ऐसा और है तावत कर्माणि पूर्वीत न निर्विद्ये जावता मत तथा क्षणादो वा श्रद्धा जम न जाए, तावत कर्माणि पूर्वीत कर्म कब तक करो, कब तक हम लोगों को कर्म करना चाहिए,
जब तक कर्म से हिंसे
कर्म से कभी भी कल्याण नहीं होगा, उससे बंधन में हो जाए, चाहे शुभ कर्म करो और शुभ कर्म करो, तो एक लोहे की बेड़ी और एक सोने की बेड़ी है, अच्छा कर्म करोगे उसके भोगने के लिए फिर तुमको जन्म लेना पड़े और बुरा कर्म करो तो उसका दंड भोगने के लिए फिर तुमको आना पड़े, इसलिए वो बेड़िया दोनों है, एक सोने की बेड़ी अच्छी देखने में सुनने में लगती है किंतु वो भी बेड़ी है, सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी कौन अच्छा, किंतु लोग कहेंगे सोने की बेड़ी अच्छी होती है, किंतु कीमती है ना, कीमती होने से वो और बंधन है, इसलिए कर्म मात्र ही बंधन है। गीता में कहा गया है ना, यज्ञा सात कर्मणो कर्म वंदना तदर्थम पंथे मुक्त संग, मुक्त संग मैंने कर्मों में आसक्ति छोड़ करके शास्त्र विहित कर्म है वो मेरे लिए करो तो ये यज्ञ होगा, हैं? शास्त्र भी तो नहीं होगा तो वो यज्ञ नहीं होगा। निष्काम कर्म अर्पित कर दो भगवान, तब तो होगा। कर्म का फल छोड़ करके इसका क्या अच्छा या बुरा फल है छोड़ दो, और छोड़ करके जैसे एक लड़की की शादी करना है संसारी, अब उसके फल में आसक्ति छोड़ करके अपने कर्तव्य के लिए उसकी शादी, यदि वो निष्काम कर्म होगा और उसका फल भगवान को अर्पित कर दिया जाएगा तो एक तरह से ये यज्ञ, इसी को कहते हैं कन्यादान। ये यज्ञ हुआ, यज्ञ कराता है ना, ये यज्ञ उसी तरह से और सब चीजें। यदि उसमें से अपने कर्मों का फल नहीं छोड़ा, शक्ति नहीं छोड़ा, तो वही जन्मबंधन में कम है। वो जिसको तुमने कन्यादान दिया है वो तुमको कन्यादान के लिए तुम कन्या बनेगा और तुमको वो यदि ये कर्म समझ, इसलिए ये कहते हैं ये कर्म नहीं कर्मों में भी अच्छी प्रभाव वर्जित न सोबते ज्ञान अलम निरंजन अकारण। जिस प्रकार से निष्काम कर्म है उसमें कोई भी मल नहीं है तो अभी वो शोभित नहीं होता, उसकी शोभा नहीं होती यदि भगवान को अर्पित नहीं होता। जब निष्काम कर्म की ऐसी दशा है जो त्रिकाल नहीं और सब समय अभद्र है, बंधन का कारण है, और वो भगवान को अर्पित नहीं किया गया,
मैं हूं कर्म कर रहे, मैंने एक बगीचा लगाया, उस बगीचे में से एक पेड़ का एक फल हमने लिया, ये बगीचा मेरा है, ये फल मेरा, और एक फल लेकर के उसमें से भगवान को कहा ये भगवान के लिए अर्पित, बाकी किसका है वो मेरा, मैं खाऊंगा, मेरी बच्ची खाएंगी, मेरे लड़के खाएंगे, मेरे इष्ट बंधु लोग खाएंगे, इसलिए ये सब कर्म का हो जाता है, बंधन का कारण। इसलिए उन्होंने कहा ही होगा कब तक कहेंगे, जब तक इस स्वरूपानुबंधी न हो, अतः तो आत्मा से संबंधित, परमात्मा से संबंधित, भगवान से संबंधित न हो तब तक के लिए ये ऐसा ही चलता। राय कहे स्वधर्म त्याग यही साधता, समझा कि नहीं? पहले वाले में है वर्णाश्रम धर्म का अच्छी तरह से पालन करने से, और इसमें जो विष्णु भक्ति है ठाकुर में घर में नारायण शिला रख दिया, कोई रख दिया और या पट विग्रह रख दिया, उसकी पूजा करते हैं, किसकी? विष्णु की, विष्णु इसमें लिखा, और सबकी पूजा करने से नहीं होगा, देवता देवी और सब ये सब नहीं होगा, वहाँ पर विष्णु शब्द उच्चारण है, इसलिए विष्णु की पूजा यदि कोई करता है, किंतु उसमें कामनाएं वासनाएं हैं और उसका फल भी है संसार में सुख, स्वर्ग में सुख या मुख, इसलिए जीवात्मा से संबंधित और भगवान से संबंधित नहीं होते, इससे सहजे योगा। इसमें कर्म फलों को, अपने कर्मों को भगवान को अर्पण करने की बात कही गई। मनुष्य कौन सा कर्म करता है? जड़ शरीर से जड़ कर्म करता है, जड़ चिंतन से जड़ कर्म करता है, क्या करता है? बगीचा लगाया, ये बगीचा लगाना क्या हुआ? अपने इस स्थूल शरीर से किया और बगीचा लगाया, और बगीचा हुआ स्थूल, उसका स्थूल फल लेकर के अर्पण करता है, इसलिए भी हो पा आत्मा से कोई संबंधित, और भी किस लिए करता है? अपने सुख के लिए, इसलिए ये सब मृग राजा जो थे उनको अंत में भगवान का दर्शन हुआ था। किसी ने पूछा कि उनको कैसे भगवान का दर्शन हो गया, गायों के दान करने से ही उनको हो गया? कहते नहीं, गायों के दान करने से नहीं हुआ, वो तो एक ब्राह्मण ने कहा महाराज इतनी गाय दान करते हैं, हमको एक भागवत पोथी दान कर दीजिए, तो उन्होंने लिखवा करके बड़े प्रेम के साथ में कहा अच्छा ये लोग लिख करके और उनको दे दिया भागवत दान कर। उसका फल हुआ ये भगवान से उनका दर्शन और उनके पत्र से उसके कर्म कर्म जितने थे वो सब समाप्त हो गए। इसके बाद में उनको तो एक भागवत के दान करने से भागवत माने क्या भागवत से संबंध किससे है भगवान से इसलिए उससे थोड़े से संपर्क से ही इतना बड़ा था। और जो भागवत की कथाओं को सुन करके वैसा चित्त बनाएगा परीक्षित जैसा तो उसको न जाने की आगति होगी। गोपियों के सेवा में जब उसको लोभ हो गया और वैसा आचरण करने लगा था तो कुछ वृत्ता भाव उसको मिल जाएगा। अब वो कहते हैं महाप्रभु जी यो बात जागे कहा आत्मा से अपमान बंधी ये धर्म नहीं है। इस फूल शरीर से किया गया जाने वाला कर्म और उसको भगवान को फूल रूप में दे रहे हैं और अपने सुख के लिए दे रहे हैं अपने शांति के लिए दे रहे हैं इसलिए ये भी बात है। राय कहे स्वधर्म त्याग यही साधता स्वधर्म त्याग यहाँ पर स्वधर्म साथ में है आगे बतला है अपने समस्त धर्मों को त्याग करके त्याग करना ही ये सार। अब इसका विवरण आगे देते हैं श्लोक में आज्ञा एवं गुणान दोषान मया दृष्टान स्वकान धर्मान संसर्ग जस कर्मान मन सजे कर्तव्य समान आज्ञा एवं गुणान दोषान अज्ञा एवं
गुणान दोषान
आ माने सम्यक रूप से ज्ञ माने जानकर क्या जानकर कर्मों का दोष और गुण जानकर अपने धर्म विहित जो उसका धर्म है वर्णाश्रम है वर्ण और आश्रम का धर्म इसका गुण क्या है और इसका दोष क्या है दोनों पर खूब अच्छी तरह से विचार करके जान करके अनुभव करके क्या करेगा मैं दिशान अपनी मैंने ही उसका उपदेश दिया है नहीं? हमारे बतलाए हुए धर्मों के दोष और गुण को जान करके अच्छी तरह से उपलब्धि करके संसत्य अच्छी तरह से भली भांति उसका जो त्याग कर देता है और मान भजे मेरा भजन करता है वो सब चौ क्या तात्पर्य हुआ फिर से समझे भगवान ने वर्णाश्रम धर्म बनाया चतुर वर्णन मया सिस्टम गुण कर्म की बात गुण और कर्म के विभाग से बना किसने बनाया भगवान ने ही बना तो वर्णन सिस्टम गुण कर्म विभाग सत्य कर्तारम अपि मां विद्धि अकर्तारम अव्यय मैंने बनाया है किंतु हमको ऐसा समझो जो मैंने नहीं बनाया उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया है और उन सबके कर्ता भी नहीं है ऐसा मुझको जो जानते हैं ये कर्म मार्ग से प्रभन्नति है इनका ये बेटा है किंतु इनका बेटा नहीं है भगवान सर्वत्र व्याप्त है किंतु कहीं नहीं है व्याप्त है ये कैसा होगा कृष्ण यशोदा के पुत्र हैं किंतु किसी के पुत्र नहीं है वो अजन्मा है ये कैसा होगा वो कोई भी कर्म नहीं करते सब कर्म किसी भी कर्म से उनका कोई भी संबंध नहीं किंतु राक्ष इत्यादि जितने भी हैं वही करते हैं फिर क्या हुआ मैंने समझ लिया इसे कैसे होता है बड़े बड़े लोगों को भी मुहियंत जब
सूरी लोग भी मुक्त पुरुष भी, देवता लोग भी मुक्त पुरुष भी। अरे बलदेव प्रभु जी मोहित हो जाते हैं तो और हम लोगों की और ब्रह्मा इत्यादि की तो बात ही क्या, वो लोग भी मोहित हो जाते हैं। तो इसलिए आज्ञा एवं अर्थात मेरे द्वारा उपदिष्ट अपने वर्णाश्रम धर्म को भी उसके गुण और दोषों को समझकर समझते हैं कि इसमें दोष ही दोष है। जब ऐसा समझ लेते हैं तो उसको छोड़ करके सब प्रकार से मेरा भजन कर। एक तो श्रीमद भागवत का और दूसरा इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं सर्वधर्मान पवित्रस्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सर्व धर्मों को छोड़ करके माम एकम मुझे ही एकमात्र मेरे शरण में जाओ, और ऐसा करने से यदि तुम्हें कोई पाप लगता है तो उन समस्त पापों से तुम्हें मुक्त छुड़ा दो, कोई भी पाप नहीं लगे। अब इस पर हम लोग थोड़ा सा विचार करें, इसको गीता का सार बतलाया सर्वधर्मान परिच्छेद्य मान एक। गीता के ऊपर में जब हम विवेचना करते हैं विचार करते हैं, बहुत से लोग तो गीता को लाख बार पढ़ते हैं रोज ही पढ़ते हैं नहीं समझते क्या उसका उपदेश है। राजनीति के वाले कहते हैं राजनीति ही उसमें सार है। कर्म वाले जो जितने हैं ना गांधी से लेकर के राधा कृष्ण और तिलक ये सब लोग कर्मी, सब लोगों ने कहा गीता अरविंद नहीं अरविंद भक्ति नाम अरविंद बहुत अच्छा उन लोगों का विचार दिया। तो ये सब लोग कहते हैं कि गीता पढ़ करके अर्जुन ने कहा गीता पूरा सुना दिया और कहा कि इन आतताइयों को मार और उसे मर मारे, इसलिए कर्म करना ही गीता का कर्म कराना ही गीता का उपदेश। हम तो देखते हैं कि अंत में अर्जुन ने क्या किया। यदि अर्जुन संन्यास ले करके चला जाता और भगवान का भजन करने लगता तो हम समझते जैसे वैसा किया, किंतु अर्जुन ने गीता सुनने के बाद में धनुष बाण लिए और लेकर युद्ध में भीष्म पितामह द्रोण कर्ण दुर्शासन और सबको परास्त करके मार करके खत्म कर दिया। ये इसलिए गीता का तात्पर्य है कर्म पर। कहते हैं कि ऐसा नहीं, किंतु अंतिम गीता के श्लोकों में ही कहा सर्व धर्मान परित्यज्यमान एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सब धर्मों को प्रत्याग करते हमारा शरण हमारे शरण मैं जैसा करता हूँ वैसा कर, तू अपने मन से मत कर। शरणागत किसको कहते हैं? शरणागत माने क्या? जिसका वो शरणागत हो जाता है वो जैसा देगा वैसा खाएगा, जैसा कहेगा वैसा चलेगा, तो शरणागत हुआ। और जब अर्जुन शरणागत हो गए तो कहा जैसा इनको पहले मारो इसके बाद में तुमको दूसरा बात बतलाएंगे, मारो इनको। किंतु उनका उद्देश्य क्या था इस पर हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं। प्रश्न जब आया गीता के साधारण रूप में, गीता में तीन योगों का वर्णन कर्म योग ज्ञान योग, जिसमें पहला संपुट है कर्म योग। कर्म नहीं, कर्म योग और कर्म में अंतर है। जिन कर्मों का योग भगवान से कर दिया है और जिसे जिन कर्मों से युक्त युक्त हो जाते हैं भगवान उनको ही कर्म योग कहेंगे। भगवान से रहित कर्मों का कोई भी तात्पर्य ज्ञान नास्तिकों के या और जो दूसरे अज्ञ हैं उनके कर्मों को कर्म योग नहीं कहेंगे। जो कर्म भगवान से युक्त युक्त कर देते हैं भगवान के लिए किए जाते हैं, ऐसे कर्मों को कर्म जो कर रहे हैं। ये नीचे वाला संकेत है बॉक्स का। इसमें ऊपर ढकना खोल दो और बॉक्स के अंदर में विवाह करने जा रहे हैं लड़की की, लड़की के लिए गहने बनाए गए हैं, सोने का, बड़ियों का, नथ और ये सब हार, गले का एक हार आज का दाम कितने लाख की सब उसमें रख दी और ऊपर चढ़ती बक्सा बंद कर दिया। तो पहले वाला कर्म योग, अंत वाला ज्ञान योग, बीच में भक्ति योग, अंत वाला ज्ञान योग है और बीच वाला क्या है, उसी में भक्ति रूपी रत्न रख दिया। किसमें रखा गया, कर्म योग के पिचारी में रख दिया गया और ऊपर से बंद। इसलिए कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीन चीज नहीं है, एक ही चीज के कच्चा आम
तीन सपान।
कच्चा आम एक है, दासा आम माने जरा लाल हो गया किंतु पका नहीं, कच्चा भी नहीं होता है सर, कच्चा भी नहीं है, पका भी नहीं है। और तीसरा है एकदम पका रसस्त मीठा आम, थोड़ा सा निचोड़ दो तो रस से फल जाएगा, गिर जाएगा। एक ही चीज, वैसे ही कर्म योग, इसके बाद में ज्ञान योग से संबंधित तीस की स्थिति होने पर ज्ञान योग होगा और अंत में भक्ति परिपक्व होकर के भगवान को प्राप्त। ये तीन योगों का इसमें वर्णन किया। इसमें से और बारीकी से विचार करते हैं तो इसमें पहला है ब्रह्म ज्ञान, दूसरा है परमात्म ज्ञान और तीसरा है
भगवत।
एक है ब्रह्म ज्ञान, पहला ये ब्रह्म ज्ञान और दूसरा है ईश्वर का या परमात्मा का ज्ञान और तीसरा है स्वयं भगवान का ज्ञान। और पहले ब्रह्म ज्ञान में हम चलते हैं तो साधारण जितने लोग हैं, जितने साधारण लोग शरीर को मैं मानकर दूसरों को मारते हैं और दूसरों से मरते हैं और उसके सुख और दुख से दुखी होते हैं, ये अज्ञ लोग। अर्जुन इसी अज्ञता को दिखला रहा है क्या, अरे ये मेरे गुरु, ये मेरे भीष्म पितामह जी, दादा परदादा और ये दुर्योधन हमारा भाई, उसका लड़का मेरा भतीजा बेटा और हमारे बंधु बांधव, हमारे मामा श्यालक सब यहाँ पर खड़े हैं और उनसे मुझे युद्ध करना है। नहीं नहीं करूँ, ये देहात्म अभिमान, देहात्म अभिमान नहीं, शरीर में आत्मा का अभिमान। संसार में प्राय ऐसे ही 99% लोग देहात्मवादी हैं, पूर्ण बुद्धि के हैं। कृष्ण ने कहा अरे युद्ध के समय में कस्कलम कुतस्वा कस्कलम इदम कम्पस्तितम, अरे मूर्ख, मूर्ख होकर के, अज्ञानी होकर के पंडित जैसे बातें कर रहा है क्या इस लोग, यही है सारी तुम प्रज्ञावादांश, तुम भाष्य से तुम बहुत पंडित अपने को समझ रहे किंतु गतासु न गतासु नाम सोचंती पंडिता, अरे पंडित तो वो है जो चले गए हैं और चले जाने के लिए तैयार बैठे हैं, उनके लिए शोक नहीं करते। और तुम अभी जो नहीं गए हैं उनके लिए ही शोक कर रहा है, जो चले गए हैं उनके लिए शोक करता तो भी कोई बात नहीं, ये तो चले नहीं गए हैं तभी, अरे तुम जाएगा कि नहीं जाएगा, तुम अपने लिए शोक कर रहा है।
सभी चले जाएंगे। ये राजा लोग पहले नहीं थे और हम पहले नहीं थे ऐसा मत समझो। न जाने कितनी बार आए हैं, हमको याद है ना भगवान, तुमको याद नहीं। मूर्ख की बातें मत करो, हम जो कहते हैं वैसा करो। तो अर्जुन ने कृष्ण के चरणों में अपने को जो कहोगे वही मैं करूंगा। तो उन्होंने बतलाना आरम्भ, पहले बतलाए देखो ये तुम बातें मुंह से कर रहे हो, शरीर आत्मा नहीं, शरीर तो बातों से जीर्णा जथा विहार है, नामान गृहना की नरो प्राणी तथा शरीरानी जीर्णानी संज्ञात नमान लीला। ये शरीर कपड़ा है, फट जाता है, इसको बदल करके फिर नया कपड़ा काम लेते, इसमें रोने धोने का अर्थ करने का इसमें गुंजाइश कहाँ? तुम इसी के लिए रो रहे हो, ऐसा कोई भी नहीं है जिसका ये कपड़ा नहीं बदलेगा। और वो जो तत्व है जो मैं हूं, नई नई छिदन के साथ प्राणी नई नाको नशो के अतिमाल पर अच्छे जो एम अदाय जो एम अधिकार जो एम हाँ तो अचल सनातन इत्यादि वो तो अचल, वो अच्छेद अदाह्य, उसको शास्त्र कटने काट नहीं सकते हैं। तुम उसको वायु स्पर्श नहीं कर सकती है, आग जला नहीं सकती, और तुम उसके लिए शो करता है। जो जाने वाला है वो तो जाएगा, और जो नहीं जाने वाला है वो कभी नहीं जाएगा, वो कभी मरेगा नहीं। ये आत्मा और अनात्मा का ज्ञान है, यह है ब्रह्म ज्ञान के आरंभ। आत्मा अनात्मा का विवेक बतलाया प्रारंभिक में, यह है ज्ञान, ज्ञान योग का अथवा वो जो ब्रह्म ज्ञान का ये पहली सीढ़ी है। और बतलाया क्या, जो प्रज्ञा मान है उनकी, उनको किसको कहते हैं, जिसको प्रज्ञा भी क्या है, प्रजाति जरा सामान इत्यादि। यहाँ पर यह बतलाया जैसे कछुए हैं, इच्छा होती अपने पैरों को हाथों को बाहर कर लेते हैं, और फिर इच्छा होती है यदि छू दो उनको तो क्या करेंगे, कर लेंगे, और फिर चलने फिरने लगते हैं, और फिर जरा छू दो ऐसा कर दो ना, इतर नहीं। ऐसे जो ज्ञानी पुरुष हैं वो क्या करते हैं, संसार के कामों में रमते नहीं हैं, उसमें आसक्त नहीं होते हैं। शरीर ये मैं हूँ ये नहीं करते, मैं ब्रह्म तत्व हूँ, हजार अमर नित्य साक्षात सनातन हूँ, ऐसा वो समझते हैं, और इन कर्मों में आसक्त नहीं होते। और अंत में इनकी अवस्था क्या होती है, ब्रह्मभूत प्रसन्न समाधक्ति लभते, इनकी अंतिम स्टेज है इस ब्रह्म ज्ञान की। बहुत जन्म जन्मांतरों में ब्रह्मभूत प्रसन्न, ब्रह्मभूत व्यक्ति ब्रह्म में स्थित हो जाता है जब, तो वो किसी भी विषय के लिए शोक नहीं करता। शरीर के विपत्तियों के लिए मरने पर या नष्ट होने पर, संसारिक वैभव के लिए, संसारिक मान अपमान के लिए, संसार किसी भी परिस्थिति के लिए शोक को कुछ नहीं करता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, वो सब समय कुछ मिल जाए तो, न मिल जाए तो, कोई अपमान कर दे तो, कोई कुछ कर दे तो, सब एक साधु जाए नंगा धड़ंगा, एक झोली भी नहीं रखा जिसमें वो कुछ अपना रखे, कुछ भी नहीं, ऐसे कर बड़ा मुस्तंद है शरीर, बड़ा तंदुरुस्त, स्नान न जाने कितने दिन तो अपने किया, बाल भी नहीं ऐसे बिखरे हुए, किधर चलता है जिधर पैर चलते हैं, कोई एम एन ऑब्जेक्ट जाने का नहीं, ये कहाँ जाना चाहिए
पैसी भर चल रहे हैं उधर ही जा रहा है। महाराज को जा रहे थे नैनी या कौन
जदू महाराज,
जदू महाराज जा रहे थे जिनसे जदू वर्ण हुआ, जदू वंश उत्पन्न वो जा रहे थे। मैं महाराज विराज पुत्री का मुझको चिंताओं का अंत नहीं, मुकुट माने क्या, विश्व की चिंता अपने मुकुट में रख करके सिर पर रख दिया है। सब लोगों की चिंता, हमको अपनी चिंता, राजा को सबकी चिंता होती, विश्व ब्रह्मांड की वो चिंता लेकर के मैं मुझे दिन रात चैन से नहीं रहता। देखा जी ये तो बड़े सुशीले बड़े आनंद के साथ में और प्रसन्न होकर के चले जा रहे हैं, कभी हंसते हैं कभी कुछ कभी कुछ। जब उनको सत्संग प्रणाम करके बोले महात्मा जी जड़क खाइए स्वरूप स्वरूप है, आप इतने बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं क्यों, आपके पास में पहनने के लिए कपड़े नहीं है, व्यवहार के लिए कोई चीज खाने के लिए नहीं है, कल अभी क्या खाएं वो भी नहीं है, किसी से कोई संबंध नहीं, आप बड़े प्रसन्न हैं। तो उन्होंने अपने 24 गुरुओं की बात बतलाई और उनसे शिक्षा की बात बतलाई, कहीं मैं आसक्त नहीं हूं कहीं भी कुछ, न शरीर में न कहीं, जैसे पृथ्वी आना सकते है आकाश में सभी कुछ है, किंतु बादल आकाश में ही है ना, किंतु आकाश से बादलों का कोई संपर्क है, कुछ भी संपर्क नहीं, असंग ये संग है। ऐसे में सबसे ये संग होकर के जो अच्छी अच्छी शिक्षाएं होती हैं उनसे सीख लेता हूँ, जिधर पैर चलता है चल जाता हूँ, बिना मांगे यदि कोई कुछ दे देता है अभ्यास करता ले लेता हूँ, नहीं तो चलता फिरता रहता हूँ भक्त। ये है निर्मम निष्ठुर निरहंकारी, शरीर से कोई नहीं। अच्छा इनको भक्ति में रख लिया जाए, भक्ति में नहीं रख है गुण ये सब इसी कोटि के हैं, इसलिए यहाँ पर ये जो श्लोक बतलाया गया है आज्ञा एवं गुणान दोषा, इसमें यही इसके पहला श्लोक यही है, उसमें बतलाया है सत्य सप्तम है, सत्य माने ये भी सप्तम है, सत्य सत्य माने यहाँ पर एक ये भी उत्तम है। इस श्लोक के पहले ये एकादश श्लोक है, ये उसी समय का श्लोक, तो उसमें ये बतला रहे हैं अकृत द्रोह वाला जो है ना विपालु विपालु अकृत द्रोह बदान सूची अकिंचन मृदु मौन सर्वैक उपकार इत्यादि 26 गुण बतलाया गया, तो वो उसमें एक बतलाया गया कृष्ण ही कसम, कृष्ण का संग वो उत्तम व्यक्ति है इसको बतलाया गया। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं सौच सप्तम ये भी उत्तम है, जैसे वो लोग 26 गुणों को ले करके हैं उसमें से 25 गुणों को ले लो, एक को हटाओ, कौन को हटाओ कृष्ण एक शरण हटाओ, आ समझ में ना, उसमें से एक गुण को हटा दो कृष्ण एक शरण, कृष्ण का शरणागत तोड़ करके बाकी जो 25 गुण हैं द्रोह आचरण करने पर भी द्रोह नहीं आचरण करता, क्यों, अरे ये मिथ्या संबंध है इसमें ठीक है दत्तात्रेय जिसमें, ये तो शरीर से द्रोह करना, ये तो मूर्ख और कुत्तों का काम है, कुत्ते ने उसको काटा इसने उसको काट दिया तो हम क्यों, अब तो सब द्रोह द्रोह आचरण करना फिर भी नहीं करते, अब बिना कारण के तो द्रोह करना तो बहुत दूर की बात, ये गुण हुआ ना, और अकृत दो सब पर कृपालु होते हैं पदान्य कुछ भी दे देता है अपना दुश्मन, क्यों देते हैं, किसी ने कुछ मांग लिया देखते हैं कि ये तो आसार चीज है, इसे हमारा कोई परमार्थी कल्याण जो मांगा उसको वही दे, कहते ये सब तो मिथ्या बात है बेकार की चीज है, इसलिए तो इसलिए वो सूची अकिंचन मृदु बदान में जितने भी 25 गुण है वो लोग उत्तम कहे गए, और वो यदि भगवान का शरणागत हो गए तो उत्तम हुए ना कुछ,
वैसे ही वो इतना परिश्रम करके उत्तम है और ये केवल मात्र भगवान का शरणागत है। कौन जो सबको छोड़ करके भगवान का भजन करते हैं, कौन सर्व धर्मान प्रतिज्ञा में एकम शरण ब्रज अहम काम सर्व पाप धर्म, वो ऐसे ही उत्तम है। अभी शुद्ध भक्ति नहीं हुई, भक्ति के द्वार पर भी नहीं पहुंची, केवल भगवान के लिए शरणागत यह भक्ति। और उतने गुण वाले जो व्यक्ति हैं, इतना परिश्रम करके, इतना मन को दमन करके, इतना उन्नत, और ये छोटा सा कर दिया क्या, मैं प्रभु आपका हूं, आप जो क्या कहेंगे वैसा, ये भी उत्तम वैसा ही है, इसलिए उत्तम। किंतु महाप्रभु जी कहते हैं कि भाई परमात्मा से इसका संबंध नहीं, इतना उत्तम होने पर ये दोनों कैसे, पहला वो बतलाया और दूसरा सर्व धर्म परिचय एकम शरण, उसी के लिए मैं बतला रहा था कि ये ब्रह्म ज्ञान जो है उसमें ये सब गुण रहते हैं। क्या वो अंतिम श्लोक की बतला रहा था गीता, ब्रह्मभूत जो ब्रह्मभूत हो जाता है, इन गुणों को प्राप्त कर लेता है ब्रह्मभूत, प्रसन्न आत्मा सब समय प्रसन्न रहता है। कब उसको एक क्या का जड़ दो तभी प्रसन्न, क्यों क्या का जड़ से प्रसन्न क्या होता है, कोई मार देगा, मान लिया कि हमको कोई कांटा कर गया है, और कोई कांटा निकाल दे तो क्या होगा, प्रसन्न होगा कि नहीं,
आत्मा आकांक्षा
वो तो हुआ, किंतु यहाँ पर कुछ बोध हो, किसी को कांटा गड़ गया और कांटा निकाल दो तो उसके लिए शोक करेगा, तो उसी तरह से किसी ने कांटा मार दिया, हमारा पूर्व जन्म का कर्म चला गया, ठीक हुआ नहीं, कर्म का फल भी करते ये खत्म हो गया, अवस्था बहुत अच्छा, शोक करने की जरूरत है। और यदि आत्मधर्म आत्मधर्म प्रतिष्ठित नहीं हुआ है, अभी तो आदेश हो रहा है सर्वधर्मान, अभी धर्मों को छोड़ करके आ जाओ, और इसको डर है कि हमको पाप लगेगा, इस त्रिपुत्र परिवार बनासन धर्म का हम छोड़ करके भगवान को जो भजन करने आएंगे तो स्त्री के प्रति हमारा कर्तव्य, इसको छोड़ करके हम कैसे जाएंगे, अभी छोटा बच्चा भी बिला रहा है, वृद्ध माता पिता है, ये क्या होगा, तो ये पाप लगेगा हमें, इसलिए तो हम लोग अभी नहीं छोड़ रहे, इसलिए ऐसे लोगों के लिए कह रहे हैं वो सब समय प्रसन्न, अपमान कर दो कभी प्रसन्न, अपमान न करो उसको कुछ सेंट इतर दे दो तो क्या होगा, रख लिया यहाँ कहीं गिर गया कोई चिंता नहीं, ब्रह्म प्रसन्नात्मा न सोचति, कोई कामना ही नहीं करता है, चला जा रहा है, कहाँ चला जा रहा है, कोई कुछ है ही नहीं, कोई गोल नहीं, कोई कुछ नहीं, ये कहाँ जाए, कुत्ते महाशय जा रहे हैं, उनका तो कोई गोल है, मील पत्थर उनको चाहिए, वहां पर वो पैर उठाया फिर वहां से लौटा, बड़े बिजी है, व्यस्त है, ऐसे हम लोग भी कर्मों में, इसलिए कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, कोई शोक नहीं, अभी हम नहीं जाएंगे समय पर, हमारे मुवक्किल लोग लौट जाए, और मुवक्किल लौट जाएंगे तो पैसे आएंगे नहीं, सुना यहां से जाकर के भाई आज तो बहुत बड़ा भारी एक मुवक्किल आया, अरे उसमें खबर क्यों नहीं दिया, मैं चला आता, तो सब कुछ बोला, उनको कोई चिंता नहीं है ब्रह्मभूतों को, जगत का लाभ और हानि दोनों बराबर है, बल्कि हो जाए खत्म तो ही अच्छा है, न सोचती किसी चीज की आकांक्षा कामना वासना नहीं करता, न सोचती मैंने शोक करता है और न आकांक्षा आकांक्षा करता है, अब उसको किस लिए दे, अच्छा ऐसे व्यक्ति का मन चंचल होगा कि नहीं, क्रोध किसको होता है, मन चंचल किसका होता है, जिसको कामना है, जिसको कोई कामना वासना है ही नहीं है,
उसको मन चिंतित किस लिए होगा? लड़की की शादी करना है, स्त्री कह रही है महाराज जनक से, तो जनक की क्या कर रहे हैं? ब्रह्म चिंतन कर रहे हैं, उनको कोई जरूरत है? हुई कि नहीं हुई, क्या होगा? नहीं हुई तो भी, हो गई तो भी कोई मतलब नहीं, ऐसे ब्रह्म। तो इसका फिर अंत में क्या होता है? ब्रह्म भूत आत्मा न सोचती न कांक्षती, समस्त सर्वेश भूतेषु
समस्त प्राणियों स्वभाव है।
यहाँ पर समस्त प्राणियों का निकालिए तात्पर्य है, जिन प्राणियों से उनको दुख होता है, जिन प्राणियों से उनको सुख होता है, ये सर्व प्राणियों का तात्पर्य। जैसे कि सांप
दुख है,
सिंह है, गाय है, भैंस है, बैल है, मनुष्य है, शत्रु है, मित्र है, सब में। गीता में भी बताया गया
विद्या विनय संपन्न,
विद्या विनय संपन्न ब्रह्मणि कवि हस्तिनी
सुनीति वसपाल के सपाल का समझ
वो पंडित हो। तो ऐसे समदर्शी हो जाते हैं, सुख दुख सब में जब कहीं उसका कोई भाव नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को हृदय निर्मल रहने पर यदि किसी संत का भेद हो गया, दर्शन हो गया, तो क्या होगा? भक्ति लहते पराम, पराम भक्ति पराशक्ति। इसमें दो प्रकार के व्यक्ति, एक तो वो है जिनको साधु, वो तो पराशक्ति लाभ कर जाए, और जिनको नहीं हुआ वो दो प्रकार के कौन? एक भगवत और भागवत चरणों में
अपराध,
अपराध, और एक निरापराध। जो ये कहते हैं कि भगवान का कार्य नहीं है, भागवत जो है ना ये ठीक ग्रंथ नहीं है, ये तो जिनका चित्त मलिन होता है इन लीलाओं कथाओं को पढ़ते हैं, बहुत से मायावादी और द्वैतवादी लोग ऐसा कहते हैं, भगवान का जन्म ही नहीं है, कर्मी नहीं है, नामी नहीं है, तो उनकी लीला क्या होगी? इसलिए थर्ड क्लास के लोगों को ये अपराधी है। भगवान का कृष्ण गोविंद नाम ये सब औपाधिक नाम है, उनका नाम क्या है? ब्रह्म परमात्मा
प्राता नियंता जगत नहीं,
नहीं, नहीं, नहीं। ब्रह्म शिव ये सब जो है ये उनके नाम है। तो इसमें जो शिव ब्रह्म इत्यादि कहते हैं वो लोग तो निरपराधी, और जो लोग वैष्णव की निंदा करते हैं, भागवत की निंदा करते हैं, कृष्ण चरित्र की निंदा करते हैं, और कहते हैं कृष्ण का शरीर भी हमारे जैसा माइक था, वो भी मर गए, उन्होंने भी जन्म लिया, ये अपराधी है, इन लोगों को कभी भी भक्ति नहीं हुई। और जो निरापराधी हैं, उनको वैष्णवों का संग होने पर, जैसे सुखदेव गोस्वामी के जीवन चरित्र में और सनक सनंदन सनातन के चरित्र में ये बताया गया, उनको ब्रह्मा और सुखदेव को व्यास जी के संग से उनको पराशक्ति लाभ हुई। अब इसमें कहते हैं कि वो जो बतलाया ये श्लोक के नीचे है, कौन सा श्लोक? मैंने जो बतला रहा था ये ब्रह्म ज्ञान जो हुआ ये हुआ पहला, यहाँ से आरंभ हुआ। दूसरा है इसको कहते हैं गुह्य ज्ञान, अब गुह्य पर ज्ञान परमात्मा के प्रति जो ज्ञान है, परमात्मा का जो ज्ञान है, ईश्वर का जो ज्ञान है, उसको कहते हैं ये गुह्य। कैसे? गीता का सब ज्ञान बतला करके 18 अध्याय में बतला रहे हैं, ईश्वर सब भूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि जंतर्भूतानि मायया। भगवान एक बना है कर्म चक्र, उसके हृदय में बीचों बीच में वो बैठते हैं और उस पर जीव को बैठा देते हैं, बैठा करके जो लोग उसमें रस लग जाते हैं, मैं कहाँ हूँ ओ, क्या ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सब हृदय में वो परमात्मा के रूप में भगवान, कौन सा रहा? कृष्ण। मैं अपने अंश परमात्मा से सब जीवों में मैं और क्या करता हूँ? भ्रामयन यंत्र रूढ़ानी, मैं मेरे पास में एक यंत्र है और उस यंत्र पर उसको बैठा देता और यंत्र को चला देता हूँ तो वो भी चलने लगते हैं। यंत्र रूढ़ानी माया, अपनी माया के द्वारा कर्म रूपी चक्र के ऊपर में उनको बैठा करके, उनको आरूढ़ करा करके भ्रमण करा, मैंने कहाँ भ्रमण करा रहा हूँ, 84 लाख प्रकार की योनियों के यंत्रों में बैठा करके कर्म में आसक्ति उनको रखने की वजह से उच्च और नीच योनियों में, देवता योनियों में इनको सुख और दुख में समझ करा। कौन करा रहा है? यंत्र रूढ़ानी माया के द्वारा। वो कहता कि मैंने किया किंतु मैंने नहीं किया, यही उसका दोष है। जो कुछ भी कार्य होता है उसमें भगवान का अनुमोदन होना चाहिए, उसमें जीव की इच्छा होनी चाहिए, माया का योगदान होना चाहिए, पूर्व जन्म का संस्कार होना चाहिए, इतना मिल करके तो कर्म होता है। किंतु ये क्या जीव का क्या कहता है? अहंकार वो अपने को करता था, हम लोग नहीं करते। ये जो बतलाया गया इसके बाद ही कहते हैं उसका बात क्या सत्य बीतते तदनंतरम ये, और एक इसके बाद में है कि वो इसके बाद में भगवान को आत्मसमर्पण करके पराशांति अधिगच्छति तमेव सर्वभावेन भारत सब प्रसादात परम परम शांति पाप प्रतिशा। इसको कहा गया दुष्यपर। अर्थात वो जो परमात्मा है जो कि कर्म चक्र में जीवों को भ्रमण करा रहे हैं, उनके हृदय में रहते हैं, उनको कोई जान ले और उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दे, ये दुष्यपर ज्ञान। क्या श्लोक? तमेव शरणं गमेव शरणं सब भावेन, सब भाव से आपके, किसके? वो जो परमात्मा कहा ना, जो जीवों के नियंता है, उनके चरणों में यदि वो आत्मसमर्पण कर देता है तो उसके प्रसाद से, प्रसाद मैंने कृपा से शांति स्थानम प्राप्त दिखा, सर्वत स्थान और शांति ये दुख ये। अब उसके बाद में कहते हैं भगवान, अरे तुम मेरे बड़े प्रिय, तुमको मैं बहुत भटकाऊंगा नहीं, तुम सबसे बड़े मेरे प्रिय हो, इसलिए सर्वभूत या तमाम तुमने परम बचा क्या तो तुम हमारे सबसे दृढ़मिति तथो बक्षामिते हितम, तुम्हारे हित के लिए मैं बतला सबसे गोपनीय चीजें सर्वगुह्य तमम। पहले बतलाया गुह्य, ब्रह्म ज्ञान है गुह्य, चेत अचेत का, चेतन अचेतन का विवेक जो है ये हुआ गुह्य। आया समझ में? और उसके बाद में संसार के प्रति अनासक्त हो करके सब कुछ करते हैं, उसमें किसी में प्रसन्न नहीं रह, सब में प्रसन्न रहते हैं, शोक शोक नहीं करते, ये ब्रह्म ज्ञान। उसकी अंतिम परिधि है ब्रह्म भूत प्रसन्न। दूसरा आरंभ हुआ, इतना करने की जरूरत नहीं है, सब लोगों के जीवों अपने हृदय में भगवान रहते हैं और सबको वही कर्म चक्र आरूढ़ रख करके उनका फल देने वाले हैं। क्यों ना उनके शरणागत हो जाओ, यदि उनका शरणागत हो जाएगा तो उनकी कृपा से अपने आप शांति सुख सब उससे ये सहज, किंतु उससे उन्नत। और अब क्या बतला रहे तुमको? मैं सत्यम से प्रतिजानो प्रियोति में, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, कृष्ण यहाँ प्रतिज्ञा कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा जब प्रभु मैं मथुरा वासियों के लोगों के ऊपर में जिनका मथुरा में जन्म हुआ उन पर मैं विश्वास नहीं करता, वो तो 10 बार बात बदलते हैं, यहाँ के जितने लोग हैं चौबों से लेकर के यहाँ के रहने वाले बैठने बिजनेस करने वाले जो कुछ भी मथुरा में जन्म लिया वो सब बातें अपने अपने बातों को बदलने वाले थे। इसलिए आप फिर बदल देंगे कुछ तो आप पर विश्वास सब। मैंने कहा मैं शपथ करता तो मैंने कहा ये शपथ को भी नहीं मानता ठीक। अच्छा मैं तुम्हारी शपथ करता हूँ मैंने तुम्हारे लिए शपथ करता हूँ। भक्त है ना प्रतिज्ञा में मैं प्रतिज्ञा करता हूँ ये तुम भक्त है मैं तुम्हारे जब भी होगा तब भक्तों की बात करूँ तुम्हारी बात कभी भी झूठे नहीं होगी ये विश्वास रखो। मैं तुम्हारी तुम्हारे सिर पर रख करके मैं सबको शपथ करता हूँ ये मैं झूठ नहीं कहूंगा। क्या कहा उन्होंने मन मना मद भक्तो मदियादि माम एव एकसि प्रतिजानो प्रिय मन मना भव चित्त को हमारे अंदर में दे दो जैसे किसने दिया कृष्ण ने स्वयं कहा जाता किसने दिया जगत में किसी ने ऐसा नहीं किया। तुम सर्वोत्तम रूप में दो प्रहलाद महाराज ने कुछ दिया किंतु ज्ञान तक ही सीमित रहे अपना हृदय नहीं दिया मस्तिष्क दिया हृदय नहीं दे सकते। सब जगह भगवान को देख रहे हैं और सब में भगवान को भी देख रहे हैं किया क्या उस भगवान की जिस जिसको देख रहे हैं उनकी चरण सेवा किया उनको पानी पिलाया न क्या किया उन्होंने देखा तो सब तो देखने का कमी रह इसलिए ये ज्ञानी भक्त के अंतर्गत में है। अनन्य भक्त गोपियों जैसे अपने हृदय को देकर के उनकी सेवा करने वाले नहीं इसके लिए फिर चलना पड़ेगा गोपियों के यहाँ। कृष्ण से थोड़ी सी थोड़ा सा वियोग उनका हो गया गोपियां कैसे उन्मत्त हो गई पेरेंट्स से पूछे कृष्ण को देखा हमारे कृष्ण को देखा किरणों से पूछ रही हूँ नदी से पूछ रही हूँ जिसको देख रही हूँ उससे यहाँ तक कि तन्मय होकर के अपने को कृष्ण मान करके गोवर्धन को धारण करने की लीला कर रही हूँ। कोई सूचना को पकड़ लिया सूचना जैसे कोई स्त्री को और सूचना समझ करके उसके स्तनपान करने लगी अपने को कृष्ण मान कर कोई यशोदा बन करके और कोई कृष्ण स्वयं बन करके वो रो रही है मैया अब नहीं अब मैं चोरी नहीं कर और रो रहे ऐसी सब लीलाओं को करना। अंत में कैसे जैसे कृष्ण को सब वर्ष पर दे देती है ऐसे पागलनी उन्मादग्रस्त हो जाती है जिसका मैं उदाहरण दे करके कहता हूँ कैसा मन मना भाव। कोई गोपी खड़ी है कृष्ण गोचारण के लिए जा रहे हैं कृष्ण गोचारण के लिए जा रहे हैं बस ये चारों तरफ ब्रज में यह बात घोषित हुई। नंद बाबा के किसी प्रतिहारी ने ढोला ढोलक बजाता हुआ आगे आगे चारों तरफ में घूम रहा है बतलाइए कृष्ण गोचारण से जाए ब्राह्मण लोग सब सज करके आ रहे हैं किस लिए कृष्ण गोचारण से जा रहे हैं किस लिए आ रहे हैं यशोदा मैया बुलाएगी और रक्षा मंत्री इत्यादि और हमको कुछ दान दक्षिणा मिल जाएगी ये सारे वहां से दौड़े आ रहे जब वो जल्दी चले नहीं तो यदि कृष्ण चले गए तो दान दक्षिणा मिलेगी नहीं इसलिए दक्षिणा अरे भैया आप जल्दी छोड़ दे छोड़ दे। अरे बेटा एक मिनट पर जा ये तुम्हारी आंख में काजल लगाया है इसमें भी लगा दो भैया भरने दो यदि चले जाएंगे कृष्ण को और वो आ रहे हैं गैया आरम्भ आ रहे हैं जल्दी से छोड़ भैया पकड़ करके छोड़ती इस आंख में वो आधे में पूछता है बैठता है इधर से चल होकर के रहा नहीं जाता उससे और बच्चे किस लिए कृष्ण गोचारण जाएंगे हम उनके साथ में गोचारण के लिए जाएंगे और जैसे चले जाएंगे सब तो मस्जिद हो जाएंगे। मैं कहते बेटा तू रह जा काजल लगा दिया हार पहना दू तुम जाएगा निर्धनों जैसा दरिद्र होकर के, और वहाँ पर बड़े बड़े गोपों के कितने कितने सुंदर लड़के आते हैं और सब उनकी माताएं सजा रही हैं, और तुम जल्दी से भगा क्यों जा रहे हो? थार जा, थार लगाने जा रहे हैं मैया कराने के, और वो जा रहा है मैया दौड़ करके जा रहा है, उस दौड़ते हुए उसको पहना रही है। लड़कों ऐसे चंचल हो, माताएं जो हैं कृष्ण जा रहे हैं तो सुधा अपने लड़के को लाल लड़ाएगी, वो भी अपने बच्चों को छोड़कर के वहां पर जा रहे हैं, और कुछ नवेलियां हैं तो नवेलियां भी जिनकी अभी दो चार पांच दिनों में शादियां हुई हैं, घर से बाहर नहीं जाती, सूर्य भी उनका मुख नहीं देखता, बड़ी सुंदरी गोपी विवाह करके अभी आई है गोकुल में, गोकुल मैंने वृंदावन में नंद गांव में या ऐसे ही वो जाने के लिए कुछ रही है बैठ लिए, देख लिया सास न देखा, सास ने देख लिया, अरे कहाँ जा रहे हैं? तो कुछ उत्तर दीजिए, अरे मत जाना, काला सांप दस देगा काट देगा, तो जाने नहीं देता तो उसको पकड़ लिया, बैठ जा मत जा, अब उसे रहा नहीं जाता, कहिए तेरी बेटी किस लिए गई, हमी को मना कर रही है, ब्रज में ऐसी कोई लड़की लड़का कोई वृद्ध कोई ऐसा है जो नहीं गया, बस मुझको नहीं जाने देगी, अच्छा तो तू क्यों जा रही है? इस तरह से दोनों में वाद विवाद हुआ, अंत में उसको भी छोड़ दिया उसको, और वो उसको धक्का मुक्का दे करके और छुड़ा करके वो एकदम दरवाजे पर चली गई। सभी लोग जितने यहाँ तक कि अंधे व्यक्ति भी कृष्ण को दर्शन की लालसा से वहां पर पहुंच जाते हैं, तो वो नवेली भी वहां पर पहुंच गई, दरवाजे के सामने खड़ी हो गई, और खड़ी हो गई बस अब पलक से कृष्ण को देख रही है, कृष्ण आ कृष्ण कितने सुंदर है, परहा पीड़म नटवर बपू जा रहे, विश्व में नारायण भी ऐसे सुंदर नहीं आ रहे, दरवाजा के सामने आया इन्होंने देख लिया इसके अंदर में भावना कैसी है, बस दूर से उन्होंने देख लिया, देख करके एक बछड़े को चिमटी काट दी, उसके चिमटी काटना माने उस बछड़े के पूंछ में वो रहता है भावना, बछुआ और वो उछला कूदा और वो भागा, तो कृष्ण ने उसको ऐसे डायरेक्शन दिया जो ठीक उसके दरवाजे की तरफ में भागा, और ये दौड़ते हुए बहाना मिल गया उसके बछड़े को पकड़ने आ रहे हैं, दूसरा कोई मतलब नहीं है, बछड़ा उधर ही भागा उधर ही आए, एकदम दरवाजे तक जब आ गए तो वो देखती एकदम तन्मय हो गई है, बस देखती ही रही, और झट कृष्ण बछड़े को छोड़ करके बंसी लेकर के उसके यहाँ पर थोड़ा सा उसको दमझोर दिया लगा दिया, अब तो एकदम जो तन्मय हो रही थी एकदम डूब गई, छोड़ करके हंसते हुए उसका प्राण और उसका मन आत्मा सब कुछ उसको ले लिया, बस कृष्ण ने अपने आप ले लिया, वो चली गई, कृष्ण चले गए, वो कृष्ण को देखती रही जब तक देखती रही, बछड़े सब चले गए, कृष्ण का बल चला गया, कृष्ण भी चले गए, धूल भी वो आकाश में जो उड़ रही थी बस वो भी धीरे 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 वो वहां की जहां की तहां खड़ी साथ आई, अरे तुमको कहा था ना यहाँ पर खड़ी है, क्या कर रही है, चल घर, तो भी नहीं सुन रही, मन तो हो तो मन तो है नहीं, मन मना भव, उसने मन कृष्ण ने जबरदस्ती ले लिया है, वो मन मना भव हो गई है, इसलिए खड़ी रही, उसको पकड़ करके ले आई, बैठा देखा जी इसको तो होश नहीं, अरे दधी मंथन करो, बस घर में गई और एक हड़िया ले आई और चलावनी उसकी सास ने दे दिया, बस हड़िया न रख करके चलाने लगी तो वो खर 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 कर रहा, उसमें सरसों था, बस सरसों को दही समझ करके चला रही, कहीं देखो तो इसकी फिर घड़ा दे दिया रस्सी दे दी, जाओ पानी भर लाओ, और बच्चे को एक दूसरे बच्चे को गोद में बैठा दिया, अभी हो ताजा चलने फिरने से, बस घड़ा पर घड़ा ले लिया, बच्चे को भी ले लिया, मोटी रस्सी भी ले ली, बच्चे को गोदी में लेकर चल पड़ी, कुएं में रख दिया, घड़े को रखा, बच्चे को भी रखा, रोड निकाली, उसमें फांस लगाया और बच्चे के गले में दे करके बच्चे को कुएं में डाल दी। वो समझ लीजिए घड़े को दे रही, अरे देखो तो इसको भूत लग गया। किसी ने कहा भूत नहीं नंद का पुत लग गया। इसको कहते हैं, इसके बाद में लोगों ने पकड़ लिया, बच्चे को पकड़ लिया, फिर उसको सास के पास, अरे इसको क्यों भेजा, और मन ही नहीं है। ऐसे ही समस्त गोपियों का चित्त मन मना भव, कृष्ण ने उद्धव को कहा था कि गोपियों का चित्त ऐसा है, दे है गए कहीं भी मन नहीं है, ये भागवत का मूल तात्पर्य है। ऐसी भक्ति के बीच ये गीता का भी सूत्रों के रूप में यही मूल तात्पर्य। अर्जुन ने कहा ऐसा मेरे लिए संभव नहीं, तो फिर तो अर्जुन को कहते हैं मन मना भव मद भक्तो भव, मेरे भक्त बन जाओ, श्रवणम कृतम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्पणम, ये सब भक्तों के चरण में समर्पित करके दीक्षा ले करके और भजन करो। अरे ये कहां युद्ध में होगा, तो फिर और कोई उपाय मत लाइए, जजनम मेरा जजन करो। जजन माने क्या है, अर्चन इत्यादि, या ये जो भी कर रहे हैं ना, ये सब अंततः ये भी तो करो, समर्पण करके हमारे लिए। क्या पत्रम पुष्पम फलम तो ये में भक्त आपने यति तद हम भक्त उपहतम स्नानी प्रजाता, ऐसा करो पनी निधि मुझसे नहीं, आप कोई और कोई चीज की बात करो। अच्छा मांग नमस्ते, एक बार मेरा प्रणाम कर दो, तभी कोई भवंदन में नहीं पाता,
प्रणाम नपुनर भगवान,
एक बार प्रणाम करने से ही भगवान। ऐसे लोगों को दूसरों को पकड़ करके लाना हमारे पास में जम करें, जिनका सिर कभी भी भगवान के लिए न था, जो भगवान का नाम नहीं कीर्तन किया, जो लोग भगवान को प्रणाम नहीं करते, भगवान की कथाएं नहीं सुनते, ऐसे दूसरों लोगों को पकड़ करके लेना, उनको मैं दंड दूंगा। और जिनके गले में तुलसी देखना, माला देखना, भगवान का नाम करते हैं, एक बार भी 63 घंटा भी ठाकुर को बजा दिया, भक्तों की कथाएं सुन रहे हैं, भगवान की कथा, उनको खबरदार 1000 माइल की सीमा में मत जाना, जाएगा तो तुम्हारा कल्याण होगा। इस तरह से ये गीता का सर्वोत्तम रहस्य आगे कल बंधा कल चतुर्दश, कल हम लोग
राम राम।